समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
बारिश की बूंदे और हाथ में चाय का कप, ऐसी सुबह हो तो क्या बात है। कितना सुखद एहसास है ना। तो देर किस बात की, मौसम भी है, दस्तूर भी, और हम भी हाजिर हैं आपके अपने न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं ताजा तरीन खबरों के साथ वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आज सवेरे के इस अंक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त जया भारती, और मेरे साथ है मेरी को होस्ट रेनू कटारिया। सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार, और रेनू अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू।
Hello Jayan, a very warm welcome to you and to all our listeners who are tuned into Akashvani FM Gold on 100.1 megahertz and the Akashvani network. Hope sabhi apne haathon mein chai ke cup le rakhe honge sabne aur hame sun rahe honge. And for you dear listeners, we are going to bring you our daily news magazine program Aaj Savere, wherein we will be giving you the latest in national and international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day. That is the 31st of July. पर सबसे पहले let's begin with the news headlines, Shaya.
Yes, सबसे पहले आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार जम्मू कश्मीर को आतंकवाद मुक्त बनाने और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता लाने के लिए प्रतिबद्ध है। पहलगाम आतंकवादी हमले के जवाब में भारत के सशक्त, सफल और निर्णायक ऑपरेशन सिंदूर पर राज्यसभा में हुई चर्चा के जवाब में गृहमंत्री ने कहा कि भारत ने आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। गृहमंत्री ने ऑपरेशन महादेव की सफलता के लिए सशस्त्र बलों और सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका की सराहना की। गृहमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत से संपर्क किया और ऑपरेशन सिंदूर रोकने की अपील की।
ये पूछ रहे हैं किसके कहने पर समाधान हुआ, किसी के कहने पर समाधान नहीं हुआ। पाकिस्तान घुटनों के बल हमारे DGMO को फोन किया कि भाई बंद करो। पहले से हमारा मकसद युद्ध का नहीं था, न पाकिस्तान के अवाम को हम नुकसान करना चाहते थे। मोदी जी ने तुरंत कहा कि अगर पाकिस्तान रोकता है तो रोक लीजिए।
श्री शाह ने कांग्रेस पर वोट बैंक और तुष्टिकरण की राजनीति के लिए आतंकवाद के प्रति नरम रुख अपनाने का आरोप लगाया। गृहमंत्री के जवाब के दौरान विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री के जवाब की मांग करते हुए सदन से बहिर्गमन किया। सरकार ने बताया है कि फिलहाल देश में आकाशवाणी के 585 FM स्टेशन और 388 निजी FM रेडियो स्टेशन कार्यरत हैं। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरगन ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष अगस्त में सरकार ने FM चैनल रहित देश के 234 शहरों में 730 निजी FM चैनल की ई नीलामी को मंजूरी दी थी। इन क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर के 3 चैनल भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि नए चैनलों के लिए वार्षिक लाइसेंस शुल्क सकल राजस्व का 4% होगा। डॉ. मुरगन ने बताया कि पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू कश्मीर के लिए चैनल के शुरू होने से 3 वर्ष की अवधि के लिए यह शुल्क सकल राजस्व का 2% होगा।
The 20th installment of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi PM Kisan scheme will be released on Saturday. In this regard, a high-level meeting was held in New Delhi yesterday under the chairmanship of Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan. The meeting reviewed the preparations for the event and to ensure that the benefit reaches the maximum number of farmers. The event will be led by Prime Minister Narendra Modi in Varanasi, Uttar Pradesh. In the meeting, Mr. Chauhan instructed officials to connect farmers at national, state, district and village levels with the program.
प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 2 अगस्त को ठीक 11 बजे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि आपके खाते में डालने वाले। इस अवसर पर वो जुड़कर आपसे बात भी करेंगे। कार्यक्रम आपके गांव में भी होगा, सभी कृषि विज्ञान केंद्रों पर होगा, ICR के संस्थानों में होगा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में होगा, मंडियों में होगा, पैक्स के मुख्यालय पर होगा। और इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है, आप प्रधानमंत्री जी के किसी न किसी कार्यक्रम से जरूर जुड़िए।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज झारखंड के देवघर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति 4 स्वर्ण पदक विजेताओं और 5 मेधावी छात्रों को सम्मानित करेंगी।
The last date for nominations and recommendations for Padma Awards has been extended till 15th August. The nominations for the awards will only be received online on the Rashtriya Puraskar portal. The nominations for the Padma Awards 2026, which will be announced on the occasion of Republic Day 2026. The Padma Awards, namely Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri, are amongst the highest civilian awards of the country. The award seeks to recognize work of distinction and is given for distinguished and exceptional achievements and service in all fields and disciplines.
अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने इस वर्ष पांचवी बार अपनी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कटौती की मांग को दरकिनार कर दिया। फेडरल रिजर्व के फैसले से इसकी प्रमुख अल्पकालिक दर लगभग 4.3% पर बनी हुई है। फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पोवेल ने कहा है कि अगर ट्रंप के भारी भरकम टैरिफ न होते तो फेडरल रिजर्व शायद पहले ही दरों में कटौती कर चुका होता।
U.S. President Donald Trump announced that he has reached a trade agreement with South Korea, which includes a 15% tariff on South Korean exports to the United States. In a statement posted on social media, Trump said that the U.S. had secured a full and complete trade deal with the Republic of Korea, amounting to hundreds of billions of dollars in investment and purchases. And moving on to the world of sports, in cricket, India will look to level the 5-match Anderson Tendulkar Test series as they face England in the final and decisive test at the Oval Ground in London today. The match is scheduled to begin at 3:30 p.m. Indian Standard Time. We have more from our sports desk.
India, currently trailing 2-1 in the series, have made key change with Dhruv Jurel coming in for the injured Rishabh Pant. Fast bowler Akash Deep is expected to return to the playing 11, while star pacer Jasprit Bumrah is likely to be rested. However, captain Shubman Gill has kept the final team selection under wraps. England are also making several changes, with regular captain Ben Stokes ruled out of the match. Ollie Pope will lead the side at his home ground. The hosts have opted for a pace-heavy attack, recalling Gus Atkinson and Jamie Overton after both proved their fitness in recent county games. Jofra Archer will also miss the final test, with team management opting to rest him as a precaution during his gradual return to international cricket. Meanwhile, organisers of the World Championship of Legends have called off the semi-final between the India champions and Pakistan champions after the Indian team refused to play, citing Pakistan's alleged support for terrorism and public sentiment following the Pahalgam attack. The Indian players, including Shikhar Dhawan, Suresh Raina, Irfan Pathan and Yusuf Pathan, had already fortified their league match and formally withdrew from the semi-final yesterday. With Sudhir Singh Yadav's report, Manik Sharma, Akashvani News, Delhi.
और अब रुख करते हैं कुछ प्रमुख महानगरों का और जानते हैं वहां का हाल। सबसे पहले रेणु से चेन्नई के समाचार।
Thank you, Jaya. Tony Revu, a serene spot near Palakkad and a short drive from Chennai, is said to become the region's latest eco-tourism destination, which is perfect for weekend travellers and wildlife enthusiasts. Nestled in the heart of wetland habitat, this one-hectare site is being developed by Thiruvallur District Administration in collaboration with the Forest Department. The project aims to combine sustainable tourism with wildlife conservation. The first phase will include visitor-friendly amenities such as seating areas, boat decks, food kiosks, toilets and an interpretation center to educate visitors about the area's rich bird life and ecosystem. That's fantastic news. Moving on to more news on Chennai, Jaya. The State Human Rights Commission, SHRC, has directed the Tamil Nadu government to pay 5 lakh rupees as compensation to a woman who delivered a stillborn baby, allegedly due to a delay in receiving timely medical attention at the Murukkeri Primary Health Centre in Vilupuram district. Commission member V. Kanadasan issued an order in response to a complaint filed by K. Devamani, the mother of the affected woman, Subbalakshmi. The complaint alleged medical negligence and inhumane treatment by staff at the health center, which reportedly led to the stillbirth. Moving on to Jaya, bataiye kya hai Delhi ki samacharon mein?
बिल्कुल रेनु, दिल्ली में सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि दिल्ली सरकार राजधानी दिल्ली को स्वच्छ, हरित और कचरा मुक्त बनाने के उद्देश्य से 1 अगस्त से दिल्ली को कूड़े से आजादी स्वच्छता अभियान की शुरुआत करेगी। 1 महीने तक चलने वाले इस अभियान में दिल्ली की विभिन्न एजेंसियां और नागरिक स्वच्छता के उद्देश्य से मिलकर काम करेंगे। सरकार ने इस अभियान के लिए दिल्ली नगर निगम को 5 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया है कि अभियान में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन राशि भी निर्धारित की गई है। वहीं नमो भारत रेल के यात्रियों के अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम RRTS ने एक समग्र यात्री सहभागिता कार्यक्रम नमो भारत चैंपियंस की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य यात्रियों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से सेवाओं में निरंतर सुधार लाना है। यात्रियों के लिए यात्रियों के द्वारा के सिद्धांत पर आधारित यह पहल नमो भारत यात्रियों की सार्थक भागीदारी से निरंतर संवाद और फीडबैक के लिए एक सहयोगात्मक मंच तैयार करेगी।
Moving on to Bengaluru Metro, Bangalore Milk Union BMUL Chairman D.K. Suresh has announced that surveys are underway to identify suitable locations for setting up Nandini milk parlours at metro stations across Bengaluru. The initiative aims to improve accessibility to Nandini products for daily commuters. Speaking to the media in Chennapatna yesterday, D.K. Suresh stated that an agreement will soon be signed with the Bangalore Metro Rail Corporation Limited, which operates the city's metro services. However, he noted that the BMRCL is currently demanding high rental charges for kiosk space. A formal request has been made to Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar and BMRCL Managing Director Dr. Ravi Shankar to consider rental concessions, highlighting that BAMUL is a farmers-run cooperative.
अब समय है देश की राजधानी।
I think you are talking about Mumbai, the financial capital. Let's go on to Mumbai.
Yes, बिल्कुल। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जल संसाधन विभाग को रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने के किसानों के लिए स्थायी सिंचाई सुनिश्चित सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, जिससे उनकी आर्थिक समृद्धि बढ़े। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कल सह्याद्री अतिथि गृह में आयोजित एक बैठक में राज्य के जल संसाधन विभाग के अंतर्गत चल रही परियोजनाओं के भूमि अधिग्रहण की प्रगति की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित जिला कलेक्टरों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने उन्हें उन जिलों में भूमि अधिग्रहण पूरा करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया, जहां यह प्रक्रिया चल रही है। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र की सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षमता को बढ़ावा देने के लिए कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में प्रमुख राष्ट्रीय संस्थानों पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड मिनिमल एक्सेस सर्जरी ट्रेनिंग के साथ 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापनों का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में प्रशिक्षण, अनुसंधान और नीति विकास को बढ़ावा देना है। साथ ही एक लचीली सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के निर्माण के लिए दीर्घकालिक तकनीकी और रणनीतिक सहयोग सुनिश्चित करना है।
Moving on to, thank you, Jaya. Moving on to Hyderabad Metro, marking the World Day Against Human Trafficking, Telangana Labour Minister G. Vivek Venkataswamy yesterday launched a toll-free helpline 8069434343 to report cases of bonded labour across the state. The initiative was announced during a state-level conference titled The Way to Freedom, held in Hyderabad. The minister assured that the Labour Department will take immediate action on complaints received through the helpline. As part of the state's broader rehabilitation efforts, he also announced that rescued bonded labourers will be given priority for Indirama housing allocations. The minister stated that February 9 will be observed every year as Bonded Labour Abolition Day in Telangana, commemorating the commitment to eradicating bonded labour. Over 200 survivors from various districts of Telangana participated in the conference. Jaya, bataiye, Kolkata se hamare paas kya samachar hai?
Ji, Akhil Bharatiya Ayurvigyan Sansthan AIIMS Kalyani ke pehla dikshant samaroh mein Rashtrapati Shrimati Draupadi Murmu मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। कल आयोजित इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने 48 MBBS स्नातकों और 9 पोस्ट डॉक्टरल सर्टिफिकेट कोर्स के छात्रों को उपाधियां प्रदान की। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि संस्थान से स्नातक करने वाले छात्रों को गरीबों और वंचितों की स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान देना चाहिए और एम्स कल्याणी को राष्ट्रीय गौरव का केंद्र बनाना चाहिए। तो ये थे अब तक के मेट्रो समाचार। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर जया और रेनू के साथ। कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए अब जानते हैं कि आज मेट्रोज में मौसम कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम की। दिल्ली में बादल छाए रहने और मध्यम वर्षा होने की संभावना है। राजधानी में आज का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। मुंबई में भी बादल छाए रहेंगे, मध्यम वर्षा के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वहीं कोलकाता में सामान्यतः बादल छाए रहेंगे, गरज के साथ छिटपुट बारिश हो सकती है। शहर में आज का न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और अब चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु के मौसम का हाल जानते हैं रेनू से।
थैंक यू जया। चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन और ड्रिजल। द मिनिमम टेम्परेचर वाज 28 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 38 डिग्रीज। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन। द मिनिमम टेम्परेचर वाज 20 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 29 डिग्रीज। Hyderabad is expected to have a partly cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. The temperature will hover between a minimum of 22 degrees and a maximum of 31 degrees Celsius.
और श्रोताओं, अब वक्त आ गया है अतीत के उस पार उन प्रमुख घटनाओं को याद करने का जिन्होंने आज के दिन अपनी एक विशेष पहचान दर्ज की। आज 31 जुलाई 2025 है और आज ही के दिन 1998 में सार्क का 10वां शिखर सम्मेलन श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में संपन्न हुआ था।
आई विल गो अ लिटिल फर्दर बैक जया। मैं जाऊंगी द ईयर 1498 में, वेयर इन ड्यूरिंग हिज थर्ड वॉयज टू द न्यू वर्ल्ड इटालियन एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर्ड द आइलैंड ऑफ ट्रिनिडाड लोकेटेड ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका।
वहीं 2005 में उज्बेकिस्तान ने अमेरिका को अपने सैनिक अड्डे हटा लेने का आदेश दिया था।
In 1790, on this day, the United States issued its first patent to inventor Samuel Hopkins for his potash process.
वर्ष 2007 में आज ही के दिन भारतीय मूल के अमेरिकी डॉक्टर सुधीर पारीख को पॉल हैरिस अवार्ड प्रदान किया गया था।
In 1856, on this day, Christchurch, located on the east coast of New Zealand's South Island, was officially chartered as a city.
और वर्ष 2008 में थाईलैंड की एक अदालत ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री थॉक्सिन शिनावात्रा की पत्नी को कर चोरी के मामले में दोषी पाए जाने पर 3 वर्ष की सजा सुनाई थी।
On 31st of July in 1861, Chirapunji in Meghalaya recorded the highest rainfall ever in a single day, a staggering 9,300 millimeter. And on this day in 1948, State Transport Corporation was established in Calcutta. And in 1992, on 31st of July, Sitar Maestro Pandit Ravi Shankar won the Magsaysay Award.
और वर्ष 2012 में प्रोफेसर अशोक सेन को पहली यूरी मिलनर फंडामेंटल फिजिक्स प्राइज के 9 विजेताओं में से एक विजेता घोषित किया गया था। और अब समय है उन प्रमुख व्यक्तियों को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। हम याद कर रहे हैं पंजाब के महान क्रांतिकारी अमर शहीद उधम सिंह को, जिन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई में अहम योगदान दिया था। अमर शहीद उधम सिंह ने 13 अप्रैल 1919 में पंजाब में हुए भीषण जलियांवाला बाग हत्याकांड के उत्तरदायी माइकल ओडायर की लंदन में गोली मारकर हत्या करके निर्दोष भारतीय लोगों की मौत का बदला लिया था। एक रिपोर्ट।
जलियांवाला बाग के इस घिनौने हत्याकांड की विचलित करने वाली यादें उधम सिंह को तब तक सताती नहीं जब तक उन्होंने लंदन के कैक्सटन हॉल में माइकल ओडायर को गोली नहीं मार दी। हिरासत में रहते हुए उन्होंने राम मोहम्मद सिंह आजाद नाम का इस्तेमाल किया, जो भारत के 3 प्रमुख धर्मों और उधम सिंह की उपनिवेशवाद विरोधी भावना का प्रतिनिधित्व करता था। उन्हें हत्या का दोषी ठहराया गया और 1940 में आज ही के दिन फांसी दे दी गई थी। इस महान क्रांतिकारी के शहादत दिवस के उपलक्ष्य में आज पंजाब में उनके जन्म स्थान सुनाम में एक राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा। पंजाब सरकार ने इस महान क्रांतिकारी के शहादत दिवस को मनाने के लिए राजपत्रित अवकाश की घोषणा की है। राज्य सरकार ने भवानीगढ़, सुनाम, बीखी, कोट शमीर मार्ग का नाम शहीद उधम सिंह मार्ग रखने का भी निर्णय लिया है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
आज ही के दिन भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेवी आशुतोष दास ने हमें अलविदा कहा था। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होते ही गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और ग्रामीण जनता के उत्थान के कार्य में लग गए। सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण वे कई बार जेल गए। छात्र जीवन में ही वे अनुशीलन समिति से जुड़ गए थे। इसी क्रांतिकारी संगठन से आगे चलकर क्रांतिकारी युगांतर पार्टी अस्तित्व में आई। इस दौरान वे कई क्रांतिकारियों के संपर्क में आए और अपने जिले में इस संगठन को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
टुडे वी आर रिमेम्बरिंग जेम्स ट्रेविस रीव्स, हु वाज एन अमेरिकन सिंगर, सॉन्ग राइटर एंड म्यूजिशियन, वन ऑफ द अर्लीस्ट पायनियर्स एंड प्रैक्टिशनर्स ऑफ द नैशनल साउंड। ही प्लेड अ सेंट्रल रोल इन द सोनिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री म्यूजिक इन द 1960s. Known as Gentleman Jim, his songs continued to chart for years after his death in a plane crash on this day, that is the 31st of July in the year 1964. He is a member of both the Country Music and Texas Country Music Halls of Fame. Jim Reeves was a country music singer who had success early on in his career, first with his song Mexican Joe in 1953 for Abbott Records. So let's listen in to the same song, Mexican Joe.
Sun shining down on Mexican Joe. He makes the night spots all along the bay. People want to see him when he comes their way. He spreads so much joy everywhere he goes. Everyone shouts, Viva la Mexican Joe.
आज पुण्यतिथि है श्रीपाद दामोदर सातवलेकर की। उन्होंने 20वीं सदी के भारतीय सांस्कृतिक उत्थान में विशिष्ट योगदान दिया था। वे वेदों का अध्ययन करने वाले सर्वप्रथम विद्वान थे। वैदिक साहित्य के संबंध में उन्होंने अनेक लेख लिखे और हैदराबाद में विवेक वर्धनी नामक शिक्षा संस्था की स्थापना की। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान करने के लिए श्री दामोदर को 1968 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। आज ही पुण्यतिथि है भारतीय ट्रैक एंड फील्ड एथलीट मान कौर की। उन्होंने कई श्रेणियों में कीर्तिमान बनाए थे। वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उन्होंने कई स्वर्ण पदक जीते। मास्टर एथलीट मान कौर ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने 105 साल लंबा जीवन जिया और मरते दम तक मुस्कुराते रहीं। मान कौर बताती थी कि उनका जीवन बेहद मुश्किलों भरा रहा। गरीबी और कई मुसीबतें जीवन में आई, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने दिमाग पर बोझ नहीं डाला। खुशी आई या गम आया, हमेशा वाहेगुरु का शुक्रिया अदा किया। वर्ष 2019 में उन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
Today is the birthday of Joanne Rowling, known by her pen name J.K. Rowling, who is a British author and philanthropist. She's the author of Harry Potter, a 7-volume fantasy novel series published from 1997 to 2007. The series has sold over 600 million copies, has been translated into 84 languages, and has spawned a global media franchise, including films and video games. She writes Cormoran, Strike, and ongoing crime fiction series under the alias Robert Galbraith. Let's listen in to Hedwig's theme from Harry Potter and the Sorcerer's Stone here now.
सोने और खाने का नाम जिंदगी नहीं है, आगे बढ़ते रहने की लगन का नाम जिंदगी है। ये कहना था हिंदी और उर्दू के महानतम भारतीय लेखकों में से एक प्रेमचंद का। मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव प्रेमचंद को नवाब राय या मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जाना जाता था। उपन्यास के क्षेत्र में उनके योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया था। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी और उपन्यास की एक ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने पूरी सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया। उन्होंने मनुष्य के सभी वर्गों से लेकर पशु पक्षियों तक को अपनी कहानियों में मुख्य पात्र बनाया है। उनकी कहानियों में किसानों, मजदूरों, स्त्रियों, दलितों आदि की समस्याएं गंभीरता से चित्रित हुई हैं। उन्होंने समाज सुधार, देश प्रेम, स्वाधीनता संग्राम आदि से संबंधित कहानियां लिखी हैं। उनकी ऐतिहासिक कहानियों के साथ प्रेम संबंधी कहानियां भी काफी लोकप्रिय साबित हुई हैं, जिसमें गबन, गोदान, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, पूस की रात आदि शामिल हैं।
एंड यू नो जया, जब हम उनके स्टाइल के बारे में बात करते हैं तो प्रेमचंद इज कंसिडर्ड द फर्स्ट हिंदी ऑथर हुज राइटिंग्स प्रोमिनेंटली फीचर्ड रियलिज्म। हिज नॉवेल्स डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स ऑफ द पुअर एंड द अर्बन मिडिल क्लास। हिज वर्क्स डिपिक्ट अ रैशनलिस्टिक लुक विच व्यूज रिलीजियस वैल्यूज एज समथिंग दैट अलाउज द पावरफुल हिपोक्रेट्स टू एक्सप्लॉइट द वीक। तो ये चीजें आजकल मुझे लगता है काफी कुछ मिसिंग है जो हमने मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में पढ़ी थी।
और आज ही जन्मदिन है हिंदी फिल्म जगत की प्रसिद्ध अभिनेत्री मुमताज की। चुलबुली, हंसमुख और नटखट मुमताज जिस समय फिल्मी पर्दे पर अपने अभिनय का जादू बिखेरती थी, उस समय हर कोई उनकी अदाकारी का कायल था। आपकी कसम, रोटी, अपना देश, खिलौना और सच्चा झूठा मुमताज की यादगार फिल्में हैं। मुमताज ने 12 साल की उम्र में बॉलीवुड में कदम रखा था। लता मंगेशकर द्वारा फिल्म लोफर में यह गाना मुमताज पर फिल्माया गया था। मुमताज को 1970 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार, 1996 में फिल्म फेयर लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार सहित कई पुरस्कार मिले। यह गाना उनका आइकॉनिक सॉन्ग माना जाता है जो आज भी लोगों के जुबा पर है। आज ही जयंती है भारतीय विद्वान, भाषा शास्त्री और गणितज्ञ दामोदर धर्मानंद कौसंबी की। गणित के अलावा उन्होंने भारत के इतिहास और संस्कृत में भी अतुलनीय योगदान दिया है। दामोदर धर्मानंद ने 16 वर्षों तक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में सेवा की। धर्मानंद जी ने प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया है।
आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है।
इस आवाज से हम सब वाकिफ हैं। जी बिल्कुल सही, ये मोहम्मद रफी की दिलकश आवाज है। आज उनकी पुण्यतिथि है। हिंदी सिनेमा में दिग्गज गायकों का जिक्र जब भी होता है तो उसमें सुरों के बेताज बादशाह कहे जाने वाले मोहम्मद रफी का नाम जरूर आता है। मोहम्मद रफी की आवाज में जो दर्द था वो सुनने वाले के दिल में उतर जाया करता था।
बिल्कुल सही जया, ही इज कंसिडर्ड टू हैव बीन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सिंगर्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। रफी वॉज नोटेबल फॉर हिज वर्सटिलिटी एंड रेंज ऑफ वॉइस। हिज सॉन्ग्स वेरीड फ्रॉम फास्ट पेपी नंबर्स टू पेट्रियोटिक सॉन्ग्स, सैड नंबर्स टू हाईली रोमांटिक सॉन्ग्स, कव्वालीज टू गजल्स एंड भजन्स टू क्लासिकल सॉन्ग्स।
आना है तो आ रहा, हमें कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। आना है तो आ रहा, हमें कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं।
कहा जाता है कि वो संगीतकार से ये भी नहीं पूछते थे कि उन्हें गाना गाने के लिए कितने रुपए मिलेंगे।
देखा, इसी को कहते हैं बहुत ही जाबाज तरीके से अपने आप को अपने कैरेक्टर में डाल देना। ही इज ऑल्सो नोन फॉर हिज एबिलिटी टू मोल्ड हिज वॉइस टू द पर्सोना एंड स्टाइल ऑफ द एक्टर, लिप सिंकिंग द सॉन्ग ऑन स्क्रीन इन दीज मूवीज। सो लेट्स लिसन इन टू दिस।
हसीना जुल्फों वाले जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान, महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहां।
And Jaya, before we end the program with this Mohammad Rafi classic from Pagla Kahin Ka, this is one of the greatest songs from 1970s. Excellent writing by Hasrat Jaffri and composition by Shankar Jaikishan.
Tum mujhe yun bhula na paoge, haan tum mujhe yun bhula na paoge.
श्रोताओं और सब समय हो गया है अब आपसे विदा लेने का, तो अनुमति दें जया और रेनू को आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की, लेकिन आप सुनते रहिए आकाशवाणी FM गोल्ड
एंड हैव अ सुपर्ब डे.
नमस्कार.